इन दिनों में इस समय में हम देख रहे थे जयवंत जीवन हमें कैसे बिताना है। हमने रोमियों के पत्री 8 अध्याय में से देखा प्रभु यीशु मसीह ने हमें जयवंत से भी बढ़कर होकर इस दुनिया में रखा है। प्रभु हमसे चाहता है कि हम एक जयवंत जीवन बिताएं। प्रभु हमसे चाहता है, हमसे ये नहीं चाहता कि हम एक डिप्रेस्ड या हम एक पराजित या हम एक हारा हुआ जीवन बिताएं, लेकिन प्रभु चाहता है हम एक उत्साहित हैं, हम एक जयवान, हम एक जय जयकार के साथ एक विजयी जीवन हम बिता सके। कई बार कई विश्वासियों को देखते हैं, वे लोग जीवन में निराश से हो जाते हैं, हताश दुखी हो जाते हैं। क्यों? कोई सफलता जीवन में नहीं है, सब जगह हार हार पराजय है। कोई नौकरी में भी कोई सफलता नहीं है, चर्च में भी कोई सफलता नहीं है, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में भी कोई सफलता नहीं है, और इस प्रकार असफलता के दौर से गुजरते गुजरते वे लोग थक जाते हैं और सोचते हैं जीवन में निराशा है, जीवन में हार है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभु ने हमें विजयश्री बनाया है, प्रभु ने हमें विजयी होकर नियुक्त किया है, और इस दुनिया में जब हम रहते हैं विजयी होकर जीना और विजयी होकर चलना और विजय के उत्सव में चलना फिरना बहुत जरूरी है। निराश होकर, हताश होकर, दुखी होकर जीना नहीं, लेकिन जीत के जश्न में है, जीत के उत्साह में जीना बहुत जरूरी है। आपने, कई लोगों ने सुना होगा एक प्रभु के दास का नाम, उनका नाम था साइलस फॉक्स है। साइलस फॉक्स इंग्लैंड से आए थे प्रभु की सेवा करने भारत में, आंध्र प्रदेश में बहुत सालों तक उन्होंने प्रभु की सेवा किया, और एक बार जब वो शिप से यात्रा कर रहे थे, जहाज से वो यात्रा, उस जमाने में पानी के जहाज से यात्रा करते थे, वो यात्रा करके वापस अपने देश जा रहे थे, तो बहुत आनंदित थे, खुश थे, और वो थोड़े जोकर जैसे किस्म के इंसान थे, और कभी कोरस गाते, एक्शन कोरस गा के अपने आप को एक्शन करके खुशी के साथ वो अपना सफर, अपनी यात्रा काट रहे थे। तो पास में उनका एक आर्मी ऑफिसर बैठा था, आर्मी ऑफिसर्स लोग बड़े डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासित होते हैं, उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी साइलस फॉक्स को देखकर। तो उन्होंने पास आकर कहा, थोड़ा ठीक से बैठो, ऐसा इज्जत के साथ बैठो। बोले तो बोले मैं इज्जत के साथ ही बैठा हूं, मैं बेइज्जती के साथ नहीं बैठा हूं। तो बोले नहीं, तुम तो ऐसे बैठे हो, तुम ऐसा कर रहे हो जैसे ये पूरा शिप तुम्हारे बाप का है, ऐसे झूम रहे हो, कभी कूदते हो, कभी कुछ गाते हो, ऐसे कर रहे हो जैसे ये पूरी जहाज तुम्हारे बाप की है। तो उन्होंने जवाब दिया, साहब ये सिर्फ पूरी जहाज ही मेरे बाप की नहीं, जहाज जिस समुद्र में जा रहा है वो समुद्र भी मेरे बाप का है, आपको मालूम नहीं है शायद। वो कौन से बाप की बात कर रहा था? जिस्मानी नहीं, आसमानी बाप की बात कर रहा था। तो वो हमेशा जीत के उत्सव में जीने वाले एक व्यक्ति, जश्न, लोग देखकर पूछते थे आपके खुशी का राज क्या है। लेकिन कई बार हमारा जीवन उस प्रकार से नहीं हो पाता, लेकिन हमें बहुत तवज्जो इस बात पर देना है, ध्यान देना है कि वास्तव में हम जयवंत बनकर जीते हैं या नहीं, क्या हम दुनिया पर जय पाते हैं या नहीं, क्या हम अपने शरीर के ऊपर जय पाते हैं या नहीं, क्या हम अपने सेल्फ, अपने स्वयं के ऊपर हम जय पाते हैं या नहीं, क्या हम अपने सिन, अपने पाप के ऊपर हम जय पाते हैं या नहीं। ये सब हम जय पाना क्यों चाहिए वो हमने देखा, और जय हम कैसे पा सकते हैं उन सारे विषयों को देखा। अब इन सारे विषयों को मैं रैप अप करना चाहता हूं, और मैं आपको बस एक ही प्रश्न में आपको थोड़ा विचार करने के लिए बताकर समाप्त करना चाहता हूं कि हम सब अपने आप को ये पूछें, एम आई ए कॉन्करर, क्या मैं एक जयवंत व्यक्ति हूं या नहीं, क्या मैं एक जयवंत मसीही जीवन बिताता हूं या नहीं। हमें हमारे पड़ोसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे पति या पत्नी या बच्चों या माँ बाप की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन की चिंता करनी है। मैं कौन हूं, हु एम आई, एम आई ए कॉन्करर इन क्राइस्ट, क्या मैं मसीह यीशु में एक जयवंत जीवन बिताता हूं, मेरा आत्मिक जीवन कैसा है, मेरा मसीही जीवन कैसा है, क्या मैं मसीह में रोज आशीष पाता हूं, क्या मैं मसीह में रोज उन्नति कर रहा हूं, क्या मैं मसीह में रोज एक जयवंत जीवन बिताता हूं। अपने आप को व्यक्तिगत रीति से जांचना परखना बहुत जरूरी है। हम कुछ बातों को जल्दी से मैं आपके सामने रखकर समाप्त करना चाहता हूं। पढ़ेंगे जॉन्स गॉस्पल चैप्टर 9:4, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 4 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है जिसने हमें भेजा है उसका काम हमें दिन ही दिन में करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई चाहकर भी काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, देयर इज ओनली वन लाइफ टू लीड अ कॉन्करिंग लाइफ फॉर क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के लिए जयवंत जीवन बिताने के लिए कितना जीवन हमारे पास है? एक ही जीवन। इस एक जीवन को हम प्रभु के लिए जयवंत बनाकर जीते हैं या नहीं, अपने आप को परख कर, अपने आप को जांच कर, अपने आप को पूछ कर प्रतिदिन अपना जीवन बिताना बहुत जरूरी है। ये एक जीवन है और इस जीवन के बारे में भी प्रभु कहता है एक रात आने वाली है जिसमें कभी कोई काम नहीं कर सकता। एक ऐसा समय आने वाला है जब चाहकर भी हम प्रभु के लिए एक जयवंत जीवन नहीं बिता पाएंगे। हम देखते हैं हमारे देश में आज बहुत आजादी है, लेकिन हमारे देश में आज भी कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आजादी के द्वार क्षणे क्षणे हैं धीरे धीरे करके बंद होते जा रहे हैं। उस समय में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ती है। प्रभु जी, जो जीवन आपने दिया है और जो दिन का वक्त आपने हमें दिया है, मैं आपके लिए एक जयवंत मसीही जीवन बिताऊंगा। इस अवसर को मैं खोऊंगा नहीं, इस अवसर को मैं बेकार जाने नहीं दूंगा। इस अवसर का सदुपयोग करके, इस जीवन का सदुपयोग करके मैं इस जीवन को आपकी महिमा के लिए एक जयवंत मसीही जीवन बिताऊंगा। एक बेटी अपने मां के साथ सुपरमार्केट गई सामान खरीदने, और जब वो गई उसके मां ने कहा, उसने अपनी मां से कहा, मां मुझे भी कुछ टॉफीज खरीदने हैं, कैंडीज खरीदनी है, आप मेरे को भी थोड़ा पैसे दो ना। तो मां ने उसको 1 रुपए का सिक्का लेके दिया और कहा, बेटा इस पैसे में तेरे को जो खरीदना है वो तू खरीद। तो वो सारे कैंडीज एक बॉटल में ऐसे जमा कर रखे हुए थे कोने में, वो जाकर एक एक को ध्यान से देखने लगी, और उसने में उसकी मां सब जगह जाकर वो सामान खरीदने में व्यस्त हो गई, और अपने उसकी मां ने सब जगह जाकर सब सामान खरीद के आई तो देखा अपनी बेटी को अभी भी एक एक बोतल के पास जाती है, देखती है, फिर आगे चली जाती है, फिर उसको देखती है, फिर आगे जाती है, ऐसा करके वो समय बिता रही थी। फिर मां ने बेटी से कहा, बेटी जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। तो बेटी ने क्या कहा मालूम है? मां आपके पास समय नहीं है, मेरे पास दूसरा रुपया नहीं है, मैं इस रुपये में सबसे अच्छा टॉफी जो मिल सकता है वो देख रही हूं, ताकि वो खर्च करने के बाद मुझे किसी प्रकार का पछतावा नहीं। ये हमें बहुत बड़ा आत्मिक संदेश भी देता है। एक ही जीवन है, सोच समझ कर खर्च करना बहुत जरूरी है। दोबारा अवसर मांगने पर नहीं मिलेगा, दोबारा जीवन मांगने पर नहीं मिलेगा। ये एक जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, इस जीवन का सदुपयोग करके, इस जीवन को जयवंत बनाकर प्रभु की महिमा के लिए जयवंत मसीही जीवन बिताना बहुत जरूरी है। दूसरा एक और पद हम पढ़ेंगे, कलोसियों की पत्री 2:14-15 हम पढ़ेंगे। कलोसियंस चैप्टर 2:14-15। कलोसियों की पत्री 2:14-15।
और उसे पर ने जड़कर सामने से हटा दिया है, और
यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही हमारे लिए एक विजय हासिल कर ली। कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने वो विधियों का लेख जो हमारे विरुद्ध में था, हमारे दंड को उसने मिटाकर, हमारे पाप को उसने हटाकर, हमारे मृत्यु को उसने दूर करके हमारे लिए पहले से ही उसने विजय हासिल कर लिया है। अब हमें क्या करना है? उस विजय का आनंद उठाना है, उस विजय में सहभागी होकर, उस विजय के आनंद में, उस विजय के उत्सव में हमें अपना जीवन बिताना है। शैतान भरसक कोशिश करता है हमको इस विजय के उत्सव से दूर रखने के लिए, हमको इस खुशी से दूर रखने के लिए, इस आनंद से महरूम रखने के लिए, इस आनंद से हमें वंचित रखने के लिए शैतान भरसक कोशिश करता है। लेकिन हमें हमेशा समझना चाहिए वी आर ऑलरेडी ऑन द विक्ट्री साइड, हम पहले से ही जय के पक्ष में हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले से ही एक जय हासिल कर ली है, अब उस जय को हमें बरकरार रखना है, शैतान का सामना करना है। शैतान अपने आप हमसे दूर भागेगा, हमको शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं। आज कई लोग हमें सिखाते हैं शैतान से लड़ना चाहिए, कई लोग हमें सिखाते हैं शैतान को बांध कर रखना चाहिए, कई लोग ऐसे प्रार्थना भी करते हैं मसीह जगत में, हम कई लोग को प्रार्थना करते हुए सुनते हैं, मैं तेरे को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं। किसने बोला तुमको बांधने के लिए? तुमको मालूम है शैतान कितना ताकतवर है? तुमसे कई गुना ताकतवर है शैतान। उसके ताकत का अंदाजा आप और मैं शायद ठीक से नहीं लगा सकते। उसको बांधने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बोला, उसको भगाने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बोला, उसके सामने से भागने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बोला। प्रभु ने हमको क्या बोला? तुम उसका सामना करो, स्टैंड अगेंस्ट द डेविल, स्टैंड टॉल, खड़े रहकर उसका सामना करो, वो तुमसे डर कर अपने आप भागेगा। एक बहुत बड़ी विजय प्रभु ने हमको दी है, अब उसमें हमें खड़े रहना है, उसमें हमें स्थिर रहना है, उसमें हमें आनंदित रहना है और प्रभु के साथ रहकर, प्रभु जी तेरे आनंद में, तेरे जय में, तेरे उत्सव में मैं भी सहभागी होकर हम दोनों साथ में अपना जीवन बिताएंगे। कई बार हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ने की कोशिश करते हैं, अपना विजय अपने आप कमाने की कोशिश करते हैं, उसमें हम बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। लेकिन नहीं, प्रभु के साथ, प्रभु ने जो जय हमारे लिए हासिल की है उसके खुशी में, उसके उसके विजय में हम भी शरीक होकर हम मिलकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। पुराने जमाने की बात है, जब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स, गिटार वगैरह नहीं थे, बहुत बड़े बड़े ऑर्गन बजाया करते थे, और वो ऑर्गन में बेलोस, जैसे हारमोनियम में बेलोस हाथ से मारते हैं, बड़े पुराने जमाने में बेलोस को एक व्यक्ति धक्का देता था, हाथ से पुश करता था, और जो ऑर्गनिस्ट है, जो वो बजाता है ऑर्गन, वो बैठकर ऑर्गन बजाता था। तो इस प्रकार एक औरत थी, एक स्त्री थी, जो बहुत सुंदर ये ऑर्गन बजाती थी। उसके लिए उसने अपने पास एक लड़का रखा था जो बार बार ये धक्का देता था। किसको? बेलोस को धक्का देता। तो ये लड़का जब बेलोस को धक्का देता है, आवाज निकलती है, और जब आवाज निकलती है और ये औरत अपने उंगलियों से कीबोर्ड बजाती है, सुंदर धुन निकलता है। तो एक बार जब इस स्त्री को, जो बहुत मशहूर थी, किसी एक सिटी में बुलाया गया शहर में कि आप आकर हमारे लिए वो ऑर्गन्स बजाओ, वो गई अपने लड़के के साथ और उस लड़के ने धक्का दिया और स्त्री ने बहुत सुंदर धुन बजाई। एक गाने का ट्यून बजाने के बाद जब रुक गई, सब लोगों ने तालियां बजाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या क्या ट्यून है, क्या वरदान है, क्या गिफ्ट है, सबने वाह वाह किया। तो एकदम एक ये लड़के ने, जो नीचे बैठकर ऐसा धक्का मार रहा था, इस लड़के ने उस स्त्री से कहा, देखिए मैडम, लोग हमको किया हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं, लोग हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं। तभी स्त्री ने क्या कहा मालूम है? लोग हमारी नहीं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, लोग हमारी नहीं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। मतलब लोग तेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। लड़के को बड़ा बुरा लग गया, ऐसी बात है। सब ताली वाली सब शांत हो गया, दूसरा ट्यून बजाने का टाइम आया, ये लड़का बैठा है, बजाओ, देखते हैं किसकी तारीफ होती। वो उंगलियां चला रही है, कुछ आवाज निकल रहा है क्या? कोई आवाज नहीं, क्यों? वो धक्का नहीं मार रहा है, वो सीधा हाथ पे हाथ धर के फिर उसने बोला धक्का मारो, तो बोले नहीं मैडम एक करेक्शन करो पहले, तारीफ कौन किसकी कर रहा है? बोले मेरे को माफ करना, लोग मेरी तारीफ नहीं हमारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ ठीक, फिर वो धक्का मारना शुरू किया और उसने ट्यून बजाया, वापस लोगों ने तारीफ में तालियां बजाई, वाह वाह खूब बोला। कहने का मतलब एक दूजे के बिना वो दोनों इनकम्प्लीट है। उसी प्रकार प्रभु के बिना, प्रभु के विजय के बिना हमारा जीवन बिल्कुल इनकम्प्लीट है। प्रभु ने ऑलरेडी वो हमारा जीवन कलवरी क्रूस पर अपने विजय के साथ कंप्लीट कर दिया है। अब प्रभु के अनुग्रह से वो विजय को हमें बरकरार रखना है, शैतान का सामना करना है और उस विजय को, विजय में हमें अपना जीवन बिताना है। इसको हमें इसके सावधानी के साथ, विजय के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। एक और पद हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद, 1 पीटर 5:8। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8वां पद।
सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले चीयों के समान की सोच में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं शैतान हमारे पीछे पड़ा रहता है हमें हराने के लिए। Satan is after us to fail us। हमें हराने के लिए शैतान हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है। यहां पर पत्रस क्या कहता है ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, शैतान किसके समान घूम रहा है? शैतान कौन बनकर घूम रहा है? शैतान कौन बन के घूम रहा है? सिंह है? शैतान शेर है? शेर के मतलब क्या है? शेर नहीं है लेकिन शेर के जैसे। मेरे दो बच्चे रात में कभी कभी वो खेल खेलते हैं, छोटा वाला लड़का बोलता है दीदी तू जा किचन में, मैं बुलाऊंगा तब आना, तब वो जाती है तो बोलते आ जा, फिर आते तो वो लड़का कहीं छुपके बैठता है बेटा, फिर बोलता है म्याऊ, फिर एकदम दीदी को ऐसा एक्टिंग करना है कि मैं डर गई, हो डेविड ने मेरे को डरा दिया। तो वो क्या, वो लड़का म्याऊ बोलता मतलब वो बिल्ली बन गया क्या? नहीं, वो बिल्ली के जैसे डरा रहा अपने दीदी को। कभी कभी बोलता वो हो कुत्ता है क्या? नहीं कुत्ता नहीं है वो, कुत्ते कुत्ते के जैसे कुत्ते का आवाज निकाल कर डरा रहा, हो डरा दूंगा मैं, थोड़ा डर जा, डर जा दीदी डर जा। उसी प्रकार शैतान क्या करता है, कौन आया? शेर आया। अरे शेर नहीं आया, ये शेर नहीं है, ये शैतान है, ये शेर के जैसे आपके ऊपर गरजता है। तुम जयवंत पे जीवन बिताओगे? अरे नहीं नहीं, नहीं। अरे तुम यहां से जाकर संसार में जय पाओगे? अरे नहीं नहीं, वो हमको डराने की कोशिश करता है और हम क्या करते हैं, हम डर जाते। आपके यहाँ तो सब छोटे छोटे मकान है, हमारे राजस्थान में सबके बड़े बड़े मकान है, तो कुछ लोग नहीं चाहकर भी कुत्ते पालते, कुत्ते पालते, नहीं तो बड़े बड़े चोर में घरों में डाका डल जाए तो फिर जो है सब लूट कर ले जाए। तो किसी किसी घरों में तो बहुत बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, बड़े बड़े, लेकिन वो बांध कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, तो बांध कर रखते हैं तो थोड़ा हिम्मत होता है, हाँ हम थोड़ा जा सकते, फिर भी थोड़ा सा मन में, फिर वो पास जाते बहुत बंदा हुआ है मालूम है मेरे को, तो भी एक एक भोंकने में थोड़ा सा है, थोड़ा सा नेटल है ना, थोड़ा सी घबराहट, अरे क्या अरे, अरे वो बंदा हुआ है बाबा, वो चेन खोलकर नहीं आएगा। हाँ ठीक है ठीक, वो जाते हैं फिर से, वो फिर से एक बार। तो शैतान भी ऐसे ही हमारे पीछे पीछे पड़ा है, गरजने वाले सिंह के समान वो पीछे पड़ा। नहीं जीना तुम जयवंत जीवन, नहीं जाना प्रभु के पीछे, नहीं जीना उसके लिए, नहीं बिताना उसके लिए सरगर्मी का जीवन। महीने में एक बार जाना बहुत है, हर हफ्ते जाने की जरूरत नहीं है, हर वीकली मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, हर अच्छी तरी रीति से आत्मिक जीवन बिताने की जरूरत नहीं है, हर गाना जोर से गाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं मसीह तो गाने की जरूरत ही नहीं है, बोल देना मैंने सीखा ही नहीं ट्यून, गरजने वाले सिंह के समान हमें डराता है, हमें धमकाता है। और हम क्या करते हैं, हम भी डर के, प्रभु जी मैं तो चतुर डर गया हूं। एक राजा रानी की बात है, राजा रानी की एक ही बेटी थी, वो बेटी बहुत सुंदर थी। वो बेटी जब बड़ी हुई तो शादी करने की उम्र, तो रानी ने राजा से कहा, देखो हमारी बेटी बड़ी हो रही है, इसकी शादी करानी है, क्या करें? तो बोले हाँ क्या करें, हमारे राज्य में कोई ऐसा योग्य लड़का भी नहीं है, सबके सब निकम्मे हैं, नालायक हैं, एक भी शादी के लिए अच्छा योग्य लड़का है, हिम्मत वाला नहीं है, तो क्या करें? तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम एक परीक्षा रखें, एक टेस्ट। जो भी लड़का अपने आप को विद्वान और वीर समझता है, जो लड़का, वो लड़का अगर ये टेस्ट पास हो गया, वो हमारी बेटी से शादी कर लेगा। बोले हाँ ठीक है। तो राजा ने अपने सेनापति से सब सब जगह जाकर राज्य में ऐलान करा दिया कि फलाने दिन में सबको आकर महल में आना है और एक टेस्ट का सामना करना है, परीक्षा का सामना करना है, और जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा उसका इनाम सोना का टुकड़ा नहीं, सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे, लेकिन राजकुमारी से वो लड़का शादी करेगा। सारे लड़के बिल्कुल आंखों में मुंह में लाली आ गई, मैं करूं, सबके सब पहुंच गए, सारे चौड़े चौड़े सीने वाले, लंबे लंबे कद वाले हैं, बहुत बड़े बड़े मसल देखे, कितने मैं पानी के तरबूज के में से मसल रखने वाले, सब बड़े बड़े लड़के आ गए और बोले हाँ साहब क्या है टेस्ट? तो बोले सब महल के पीछे जाओ। सब महल के पीछे आ गए, महल के पीछे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, है स्विमिंग पूल ना, तैरने का स्विमिंग पूल था, तो स्विमिंग पूल में बहुत सारे मगरमच्छ, मगरमच्छ। तो बोले जो बंदा, ये जो भी लड़का स्विमिंग पूल से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर स्विमिंग करते हुए जाएगा और मगरमच्छ से भी बच के उस पार निकल जाएगा, वो लड़का हिम्मत वाला है और वो मेरी बेटी से शादी करेगा। सबने मन में कहा, जोर से कहने का हिम्मत नहीं है, मन में कहा तेरी बेटी तेरे पास रख पापा, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी, हमको हमारी जान प्यारी, हमको तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए। फिर भी हिम्मत करके कुछ दो चार आठ दस लड़के पास में स्विमिंग पूल के पास है, डाइविंग पॉइंट में आके ऐसे खड़े हो, ऐसे डर रहे, डर लग रहा है, फिर भी एक तरफ डर है, एक तरफ वो राजकुमारी का ख्याल, अयो राजकुमारी से शादी। फिर जब जैसे ही मुंह खोल के देखते हैं पानी के सामने कौन है, पानी के अंदर है वो मगरमच्छ, मुंह खोल के अरे नहीं चाहिए राजकुमारी, ऐसे दुविधा में पड़े, चारों तरफ सन्नाटा है, खामोशी है, साइलेंस, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। इतने में एक आवाज आती है, ठपाक, क्या हुआ? एक आदमी पानी के, हो देखा कौन है, तो एक लड़का बहुत फास्ट स्विमिंग करके जा रहा है, कूद गया एक लड़का अंदर, बहुत फास्ट स्विमिंग करके करके जा, उसके पीछे सारे के सारे मगरमच्छ उसके पीछे जा रहे हैं। लकीली ने एक सेकंड से भी कम समय में वो बचकर खड़ा हो गया, उस पार पहुंचकर उस तरफ खड़ा हो गया। क्या बहुत है, क्या? तो उसको आया बड़ा गुस्सा, उसने बोला चुप चुप हो जाओ सब, ताले बंद करो। अरे क्या बंद करे, तू यार बड़ा हिम्मत वाला आदमी है, तू राजकुमार से शादी करेगा। अरे चुप हो जाओ, सब चुप हो गए। बोले सबसे पहले यह बताओ मेरे को, धक्का किसने दिया था? मेरे को अंदर धक्का किसने दिया था? मेरे को कोई राजकुमारी नहीं चाहिए, पर मेरे को पता नहीं किसने धक्का दे दिया। मैंने फिर सोचा अब पड़ी गए कुएं के अंदर, या तो इस तरफ या उस तरफ, तो मैंने अपनी जान बचा के कोशिश की और वो तो ईश्वर के दया से उस पार कूद के आ गया, नहीं तो मैं तो आज अंदर इनके पेट के अंदर रहता। मेरे को धक्का, इसी प्रकार शैतान कोशिश करेगा, थोड़ा धक्का दिखाई देगा, थोड़ा धक्का देगा, मगरमच्छ का मुंह दिखाएगा, सब गरजने वाले सिंह के समान वो चिल्लाएगा, डांटेगा, गुर्राएगा, लेकिन आपको और मुझे घबराना है, आपको और मुझे डरना नहीं है। क्यों? विजय ऑलरेडी हमारे पास है, प्रभु ने हमारे लिए विजय हासिल कर ली है, अब शैतान हमारे पीछे पड़ा है, किसके लिए? कैसे न कैसे भी उस विजय के उत्सव से हम महरूम रह जाए, उस विजय के खुशी से हम दूर रह जाए, हम पराजित होकर, हम हार कर इस दुनिया में जयवंत जीवन हम नहीं बिता सके। लेकिन प्रभु की ओर देखकर, शैतान का सामना करके, प्रभु की ओर देखकर हमें जो दौड़ दौड़ना है, जरूर अगर दौड़ते रहेंगे प्रभु हमें आशीष देगा और प्रभु के अनुग्रह से इस दुनिया में हम विजयी जीवन बिता सकेंगे। एक और पद हम पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी उसकी पत्री 4:7-8 पर, 2 Timothy 4:7-8, दूसरा तिमोथियुस 4:7-8 पर।
मैं अच्छी पुस्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं मैं उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जाने।
We'll be rewarded for a conquered life. अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए हम एक जयवंत जीवन बिताते हैं, हमें प्रभु प्रतिफल प्रदान करेगा। पौलुस कहता है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ ली, मैं अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, अब मेरे लिए क्या है? एक प्रतिफल है। अब मेरे लिए क्या है? एक मुकुट है जो वो धर्मी न्याय उस दिन मुझे देगा, और न केवल मुझे लेकिन उन सबको जो उसके आगमन को प्रिय जानते हैं और जयवंत जीवन बिताते हैं। अजीज विश्वासियों, जब आप और मैं हम जयवंत मसीह जीवन बिताते हैं, उसके लिए प्रभु हमें सम्मानित करेगा, प्रभु हमें प्रतिफल देगा, प्रभु हमारा आदर करेगा। इसलिए जयवंत जीवन बिताना बहुत जरूरी है। एक ऐसे नगर, एक ऐसे देश में जाएंगे जहां आंसू और दुख और परेशानी नहीं है। लेकिन एक वर्ष है बाइबल में, पढ़िए Revelation 21:4, प्रकाशित वाक्य 21:4 पर।
उनकी आंखों में सब आंसू पोछ डालेगा।
क्या पोछेगा?
आंसू।
स्वर्ग में क्या नहीं है? हमने कहा स्वर्ग में आंसू नहीं है, फिर कौन से आंसू प्रभु पोछ डालेगा उनकी आंखों से?
उसके बाद मृत्यु न रहेगी।
हाँ, बस बहुत है उतना है? स्वर्ग में जब दुखी नहीं है, स्वर्ग में आंसू नहीं है, यहां लिखा है प्रभु उनके आंखों से आंसू पोंछेगा। बहुत दिनों तक मैं दुविधा में था, द्वंद में था, प्रभु ये कौन से आंसू के बारे में लिखा? स्वर्ग में तो आंसू नहीं है, और स्वर्ग का ही एक चित्रण है, प्रभु स्वयं अपने भक्तों की आंखों से सारे आंसू पोंछेगा। तो ये कौन से आंसू है? एक किताब में मैंने ऐसा पढ़ा, एक एक्सप्लेनेशन, जब विश्वासी होकर हम जो आज प्रभु को बिना देखे विश्वास करते, बराबर, आज तक हमने प्रभु को साक्षात देखा नहीं, उस दिन स्वर्ग में जाने के बाद पहली बार जब हम प्रभु को देखेंगे तो क्या करेंगे? खुशी और आनंद से भर जाएंगे। और कभी कभी जब बहुत खुश हो जाते हैं हम, तब हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। तो स्वर्ग में ना केवल दुख के आंसू के लिए जगह नहीं है, खुशी के आंसू के लिए भी स्वर्ग में जगह। There will be no tear drop in heaven, not even for tears of joy. हमारे प्रभु को हम देखेंगे, प्रभु जी आप ही तो हैं जिन्होंने मेरे लिए जीवन दिया, आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे संभाला, आप ही तो हैं जिन्होंने मेरी सहायता की कि मैं जयवंत जीवन बिता सकूं। आपको मैं अभी देख रहा हूं, 80 साल के बाद, 90 साल के बाद, 40 साल के बाद, 30 साल के बाद मैं पहली बार आपको देख रहा हूं, प्रभु जी मैं कितना खुश हूं। शायद मेरी आंखों से एक दो आंसू के बूंद भी बह निकलेंगे, प्रभु आपके आंखों से वो आंसू पोंछ कर कहेगा, बेटा यहां पर दुख के आंसू के लिए भी कोई स्थान नहीं है, खुशी के आंसू के लिए भी कोई स्थान नहीं है, यहां पर सिर्फ प्रतिफल है, यहां पर सिर्फ खुशियां है, यहां पर सिर्फ मुकुट है, यहां पर सिर्फ आदर है, यहां पर सिर्फ सम्मान है, यहां पर अनंत काल का आनंद और खुशियां ही। क्यों? क्योंकि हमने जयवंत जीवन बिताया। अजीज विश्वासी, हम अपने आप के जीवन को जांचें, किस प्रकार का जीवन हम बिताते हैं, क्या हम जयवंत जीवन बिताते हैं या नहीं। एक और बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, जब हम जयवंत जीवन बिताते हैं परमेश्वर उससे सम्मानित होता है। पढ़िए दानियल के पुस्तक 6:1, Daniel chapter 6 verse 25 and 26. Daniel ke pustak 6 adhyay 25 pad aur 26 pad. Daniel chapter 6 verses 25 and 26.
सब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास दिया लिखा,
सारी पृथ्वी और सारे देश के लोगों को ये लिखकर संदेश भेजा। हाँ,
तुम्हारा भोग कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दैनियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और तरतराते रहे।
वहां पर वहां सबके लोग किसके परमेश्वर के सामने? दानियल के परमेश्वर के सामने कांपते और थरथराते रहे।
क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है।
हाँ, जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसके
उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी।
उसका राज्य अविनाशी और उसका प्रभुता हमेशा स्थिर रहने वाली है। एक अन्य जाति राजा अपने सारे राज्य के कोने कोने तक संदेश लिख के भेजता है, मेरे देशवासी अब किसके सामने कांपेंगे और थरथराएंगे? दानियल के परमेश्वर के सामने। कहने का मतलब, जब आप और मैं हम जयवंत मसीह जीवन बिताते हैं, परमेश्वर उससे महिमावान होता है। इंग्लिश में कहावत है, द सोल्जर्स फाइट द किंग इज ऑनर। सैनिक लोग लड़ते हैं, सम्मान किसको पहुंचता है? राजा को पहुंचता है। ये लोग यही कहते हैं, लोग ये नहीं कहते कि उस देश के सैनिक जीते, लोग ये कहते हैं कि उस देश का राजा जीत गया। अमेरिका और इराक का युद्ध हुआ, लोगों ने ये नहीं कहा कि अमेरिका के सैनिक जीत गए, लोगों ने यही कहा कि बुश जीत गया। सद्दाम हुसैन हार गया, बुश जीत गया। राजा हमेशा सम्मानित किया जाता है। हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप और मैं हम जयवंत मसीही जीवन बिताएंगे, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे प्रभु के नाम की महिमा होगी। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही तो कहा था। पढ़िए मत्ती 5 अध्याय उसका 16 पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्ष 16।
उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर,
वे तुम्हारे भले कामों को देखकर
तुम्हारे पिता की,
तुम्हारे पिता की
जो
स्वर्ग में है बढ़ाई, तुम्हारे काम देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई। जब लोग हमारे काम देखते हैं, जब लोग हमारा जीवन देखते हैं, जब लोग हमारा व्यवहार देखते हैं, हमारे जीवन में जब प्रभु को देखते हैं, वो महिमा किसकी करते हैं? प्रभु की महिमा करते हैं। मुझे नहीं मालूम आपने वो कहानी सुनी कि नहीं, साधु सुंदर सिंह एक बार इंग्लैंड में गए, लंदन में, बहुत समय पहले की बात है। साधु सुंदर सिंह जब लंदन में गए, लंदन में जो भी मेन एंट्रेंस होता है उसमें एक छोटी सी खिड़की होती है, उस खिड़की के अंदर तरफ वो पर्दा छोटा सा लगा रहता है, कोई भी जब कॉलिंग बेल बजाता है घर के लोग पहले अंदर से वो पर्दा हटाकर देखते हैं कौन है। सबके लिए मेन एंट्रेंस नहीं खुलता है, जो दूसरे लोग होते हैं, घर के काम करने वाले लोग होते हैं, उनको बैकयार्ड से है पीछे वाले दरवाजे से मकान के अंदर आना होता है। सिर्फ बड़े बड़े गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ही मेन एंट्रेंस से अंदर आते हैं। तो जब साधु सुंदर सिंह ने लंदन में जाकर अपने एक परिचित के घर में जाकर कॉलिंग बेल बजाया, तब वहां के घर की बेटी ने वो पर्दा हटाकर देखा कौन है। वो साधु सुंदर सिंह को नहीं पहचानती थी, वो नहीं जानती थी कि इनका नाम साधु सुंदर सिंह है, लेकिन उनका हुलिया सब उसने ध्यान से देखा और वापस पर्दा डाला। फिर उसकी मां ने उससे पूछा, बेटी हु इज एट द डोर बेबी, हैं दरवाजे पे कौन है, किसने घंटी बजाई? तब उसकी बेटी ने कहा, बहुत दिलचस्प जवाब दिया, उसकी बेटी ने कहा, मां मुझे नहीं मालूम दरवाजे पे कौन है, लेकिन मुंह देखकर और उसका मुंह का प्रकाश देखकर ऐसा लगता है जैसे यीशु मसीह द्वार पर खड़े। साधु सुंदर सिंह के मुंह पे जो नूर था, साधु सुंदर सिंह के मुंह में जो महिमा थी, जो चमक था, छोटी सी बेटी देखकर समझ ली, मां कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं। आप और हम भी दुनिया में जीवन बिताते हैं। मलयालम में एक कहावत है, हम दो आंखों से देखते हैं लेकिन हजार आंखें हमें देखती है। दुनिया की हजारों आंखें हमें रोज देखती है, हमारे अंदर वो किसको देखती है? जब तक हम जयवंत मसीही जीवन नहीं बिताते हैं, तब तक लोग प्रभु हमको प्रभु हम तब तक लोग हम में प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे। इसलिए आजीज विश्वासियों, प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें, आने वाले दिनों में हम पराजित जीवन नहीं, हम जयवंत मसीही जीवन बिता सके। इसी में हमारी भलाई है, इसी में प्रभु के नाम का आदर सम्मान होता है। एक पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 5:29, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसका 29 पद। ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 5:29, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 29 पद। परमेश्वर कहता है, भला होता यदि मैं मेरा ये लोग मेरा भय मानकर मेरी सब विधियों और आज्ञाओं पर चलते। फिर
कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती
है। जिससे उनके और उनके वंश की सदा क्या होती रहे?
भलाई होती
है। अजीज विश्वासियों, आपकी और मेरी भलाई इसी में है, हम परमेश्वर की महिमा के लिए जयवंत मसीही जीवन बिताएं। पौलुस रोमियों के 8:37 में कहता है, इन सभी बातों में यीशु मसीह में होकर हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। लेकिन क्या उस जय को हम बरकरार रखते हैं? क्या हम जयवंत मसीह जीवन होकर जयवंत मसीही होकर हम जीवन बिताते हैं? इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारे वंश की भलाई है, इसी में हमारी पीढ़ियों की भलाई है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु का भय मानते हुए उसके आज्ञाओं का पालन करते हुए एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और एक पल के लिए प्रभु के सम्मुख हमारे दिल को खोलें और प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं एक जयवंत मसीही जीवन आपके लिए बिताना चाहता हूं। मैं संसार पर जय पाना चाहता हूं, मैं शरीर पर जय पाना चाहता हूं, मैं स्वयं पर जय पाना चाहता हूं, मैं पाप के ऊपर जय पाना चाहता हूं। हमारे दिल की गहराई से यदि हम प्रयास करेंगे, प्रभु हमें अनुग्रह देगा और जय के उत्सव में प्रभु हमें लिए चलेगा। और जब हम विजयी मसीही जीवन बिताएंगे, हमारे प्रभु के नाम की महिमा भी इसी के द्वारा होगी और इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारे वंश की भलाई है। इसलिए जयवंत मसीही जीवन होकर बिताने के लिए, जयवंत मसीही जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबकी विशेष सहायता और मदद करें। मैं दरख्वास्त करूंगा कोई भी एक भाई से मेहरबानी से प्रार्थना करके इस सेशन को समाप्त करें।